अगली आयतों में जाने से पहले पिछली आयतों का खुलासा, क्योंकि आगे से मौजू बिल्कुल बदल रहा है। अभी तक जो बात हमने आज के इस सबक में देखी, उसमें सबसे पहली बात क्या है कि इस दुनिया में किसी को भी पूजे जाने का अगर हक है, किसी की वर्शिप का अगर हक है, तो वो अल्लाह सुबहाना ताला को है। अल्लाह ताला की ज़ात एक है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाली है। उसने इस कायनात को तन्हा बनाया और अब इसका इंतज़ाम भी वो तन्हा चला सकता है। ये वो हकीकत है कि जिसको ये समझ आ गई, वो अल्लाह से दूसरी तरफ मुंह कर नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक इंसान शादी के बाद एक लड़की, एक औरत और एक अच्छा मर्द भी किसी दूसरी तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि मेरी सारी ज़रूरियात अब इसी मर्द से पूरी होंगी। ये तो इंसानी मजबूरी है ना, मिसालें भी हमें इंसानों ही की देनी है। अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कोई मिसाल नहीं है। हम अल्लाह ताला को दुनिया के लोगों की तरह नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को समझने के लिए हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आती है आयत 163 में कि इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, अल्लाह एक है। सवाल पैदा होता है कि एक अल्लाह ही क्यों, दो क्यों नहीं, तीन क्यों नहीं? तो इसकी अमली जिंदगी में कितनी मिसालें हमें मिलती हैं कि जब ड्राइविंग सीट पे एक शख्स बैठा हो और उसके साथ वाला भी उसके साथ कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश करे, तो फायदा होगा कि नुकसान? गाड़ी खराब हो जाएगी। एक चूल्हे पे पकते हुए खाने में अगर दो लोग चम्मच फेरने लग जाएं तो खाना खराब हो जाएगा, ठीक है? तो पहली बात अभी के सबक की क्या है कि अल्लाह एक है, दुनिया में कोई उसके बराबर नहीं, उस जैसा नहीं। सूरत शुरा में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि लैसा कमिस्लिही शैयुन वहुवस समीउल अलीम, उसकी तो मिसाल जैसा भी कोई नहीं। यानी अल्लाह जैसा होना तो दूर की बात है, अल्लाह ताला की मिसाल जैसा भी कोई नहीं है, क्योंकि वो खालिक है, बंदा मखलूक है, ठीक है? इंशाल्लाह आगे कुरान पाक में इसी की आपने सारी तफसील पढ़नी है कि अल्लाह क्या है और क्या नहीं। याद रखिए, नबियों ने सिर्फ ये नहीं बताया कि हु इज़ गॉड, अल्लाह कौन है, उसने ये भी बताया कि कौन खुदा नहीं है, ठीक है? फिर अगली आयत आप देखिए कि आयत नंबर 164 में हमने 8-9 निशानियां पढ़ी अल्लाह के इलाह होने की या उसको पूजने की वजूहात। जैसे मिसाल है कि आप अपने बच्चे से कहती हैं कि बच्चे मेरी बात मानो, मेरा कहना मानो, तो बच्चा आपसे कहता है क्यों मानो? तो फिर माँ क्या कहती है, देखो मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें 2 साल तक दूध पिलाया, फिर तुम्हें टेक केयर की। समझ आती है ना वजह? इसी तरह जब आप कहते हैं कि भाई ये शख्स है, इसकी इज्जत करो, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा बाप है। तो फिर बच्चा पूछ सकता है क्यों करूं? तो फिर माँ समझाती है उसको कि देखो ये तुम्हारी टेक केयर करते हैं, तुम्हारे खर्चे सारे पूरे किए जब तुम पैदा हुए तब से लेके तुम्हारे पढ़ने के लिखने के। तो हमेशा दुनिया में हम किसी की भी जब बात मानते हैं तो उसके पीछे कोई सबब होता है ना। तीन असबाब आपको बताए थे कि एक सबब होता है किसी से मोहब्बत करने का कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी करता है। क्या अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतें पूरी करता है ना? अल्लाह ताला के साथ हमारा कोई मुफाद लगा हुआ है ना? लगा हुआ है, हम तो एक सांस नहीं ले सकते। आप अल्लाह के मुकाबले में किसी दूसरे को खड़ा करके देख ले, सिर्फ एक सांस नहीं दे सकता हमें। सारी दुनिया के डॉक्टर एक तरफ खड़े हों, मशीनें सारी मौजूद हैं, सारे पीर बुला ले, मुर्शिद बुला ले, गुरु बुला ले, इंसानों के सहारे जिनको वो मानते हैं उनको बुला ले और कह दो सिर्फ इस जाते बंदे को एक सांस दे दो, एक सांस कोई नहीं दे सकता। तो गोया कि फिर अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है? तो जब दुनिया में किसी से मोहब्बत होती है तो फ़ायदों के हासिल के लिए होती है, अल्लाह ताला से मुफाद है हमें मिल जाता है। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि किसी चीज़ से मोहब्बत होती है वो लज्जत के लिए होती है, वी इंजॉय इट। जैसे मुझे खजूर से मोहब्बत है, क्यों? कि खजूर खाओ तो मज़ा आता है। हमें अच्छे अच्छे खानों से मोहब्बत होती है, लोग दूसरे शहरों में चले जाते हैं खाना खाने, कई कई घंटे की ड्राइव करके कई कई मील से जाते हैं कि जी हमें वहाँ का खाना पसंद है, ठीक है, मज़ा आता है। तो इस वजह से इंसान किसी से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला से बातचीत करने में, अल्लाह सुबहाना ताला के साथ ताल्लुक़ रखने में इंसान को मज़ा आता है। इस मज़े को बंदा कहाँ लेता है? दिन की 5 नमाजों में। 5 दफ़ा जो नमाज पढ़ते हैं ना, ये अल्लाह से मुलाकात की तैयारी है। जब हमने मरने के बाद दोबारा उठना है तो अल्लाह ताला के साथ मामला होना ना, तो दुनिया में 5 दफ़ा वो लज्जत मिलती है। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज्जत नज़री इला वजही का, कि अल्लाह मैं तेरे चेहरे को देखने की लज्जत का सवाल करती हूँ। आप इसको अपनी समझ से यूँ समझ लें कि जैसे किसी अपने प्यारे से मिल के खुशी होती है। आप लंदन में रहती हैं, 5 साल हो गए आप अपने मुल्क नहीं गई, पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या बांग्लादेश में आप नहीं गई, आपको अब उम्मीद लग गई कि आप 1 महीने के बाद छुट्टियों में आप अपने पेरेंट्स को मिलेंगी। सोचिए ज़रा वो 5-6 साल बाद जब आप एयरपोर्ट पे अपनी माँ या बाप को देखते हैं तो क्या लगता है? मोहब्बत होती है ना। शौहर चले जाते हैं, कई साल दूर रहते हैं, फिर जब मिलते हैं तो खुशी होती है ना, बच्चों को देख के खुशी होती है। बस उस खुशी को जहन में रखें कि जिससे हमें मोहब्बत होती है ना उसको मिलके हम खुश होते हैं। ईमान वालों को अल्लाह से मोहब्बत होती है, सबसे ज्यादा उसकी मोहब्बत अल्लाह से होती है, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला से मिलकर खुशी होगी। दुनिया में नमाज उसका एक तारुफ है। गोया कि आपसे कहे कि मुसलमान दिन में 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो आप कह लीजिए कि अल्लाह से मुलाकात की खुशी लेने के लिए। अब जब नमाज समझ आ रही होगी तो फिर आएगी ना खुशी, ये एक अलग इशू है, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ हमने देखी थी कि किसी से मोहब्बत की वजह क्या होती है, कि उसमें खुद ही खूबियाँ बड़ी होती हैं, कोई ख़ास किरदार ही ऐसा होता है। कुछ इंसान बहुत नाइस होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, गीबत नहीं करते, बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी में हुसन होता है, तो रह जाते लोग भी उनसे प्यार करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी खूबियाँ अल्लाह में मौजूद हैं, ठीक है
ये क्या क्या है
जी।
कि अल्लाह से मुलाकात करने की तैयारी
तैयारी कर रहे हैं हम लोग,
कर रहे
कोशिश
हैं,
कर रहे हैं कि जब हम
जैसे
क्या
वेटिंग दे रहे हैं अल्लाह
जी
की।
जी बिल्कुल, कयामत के दिन भी हमने मिलना है, तो आज दुनिया में नमाज में उसकी तैयारी जैसे रिहर्सल होती है ना, उसकी तैयारी कराई जाती है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने अपनी इतनी नेमतें हमारे सामने कर दी कि देखो तुम मेरी बात क्यों मानो, क्योंकि मैंने आसमान को पैदा किया, मैंने जमीन को बनाया, गिनते जाए अपनी उंगलियों पे कितनी निशानियां इसमें। अब बताइए कभी किसी बुजुर्ग किसी बाबे बुजुर्ग ने ये दावा किया कि आसमान उसने बनाया, जमीन उसने बनाई है? नहीं बनाई। तो ये काम अल्लाह ही का है, तो अल्लाह से हम क्यों मोहब्बत करें, उसकी पहली वजह कि उसने आसमान बनाया, फिर जमीन बनाई, तीसरी वजह रात और दिन आ रहा जा रहा है, वक्त इलाफ लैली व नहार। चलिए आप देखिए कि घड़ियां 1 घंटा आगे पीछे हुई ना, तो भाई सूरज को ही रोक लेते, रात को रोक लेते, चांद को रोक लेते कि नहीं 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 तुमने अभी नहीं आना, या सूरज को कहते जल्दी आओ, कोई कर सकता है? ये जो हम घड़ी को आगे पीछे करते हैं ना, ये हम अपनी बेबसी मानते हैं, क्योंकि वक्त इलाफ लैली व नहार, रात का आना दिन का जाना ये अल्लाह के हाथ में है। कोई जिंदा मुर्दा पीर वरी मुर्शद कोई इंसान तो इंसान, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है। आज कितनी साइंस हो गई रिकॉर्ड, देखिए कि मैं इस वक्त बोल रही हूँ पूरे ग्लोब पे आप सुन रहे हैं, जो जहां से सुनना चाहता है सुन सकता है, ये साइंस की तरक्की है। मैं यहाँ बोल रही हूँ, ये माइक मेरी आवाज पीछे तक लेके जा रहा है, ले जा रहा है ना, ये तरक्कियां हो रही हैं और भी होंगी, हमारे घर आरामदेह हो रहे हैं, गर्म पानी ठंडा पानी, लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद क्या आज तक कभी कोई साइंसदान या कोई मुल्क ये दावा कर सका कि हमने रात पे काबू पा लिया? हम नहीं चाहते अभी रात ना हो तो नहीं हो रही, हमने सूरज का पहिया अपने हाथ में ले लिया, चांद का अपने हाथ में ले लिया, नहीं कर सकते ना। फिर इसी तरह आप देखिए कि आप तो यहाँ हैं नॉर्वे में, जाइए जरा आप थोड़ा सा ऊपर जाए, मारूफ है हमारे कल्चर में 6 महीने की रात 6 महीने का दिन, तो एक मुकाम ऐसा है कि साल में एक दिन ऐसा आता है कि बस सूरज यूं डूबता है, पानी है वहां, तो सूरज जब डूबता है ना सनराइज, बहुत लोग आए होते हैं उस वक्त देखने के लिए, तो सूरज बिल्कुल इस तरह जाता है पानी में, ऐसे लगता है डूब रहा है, और 2-3 मिनट के बाद वो फिर वहां से उभरना शुरू हो जाता है। 5 मिनट घड़ी में देखे ना तो सूरज इधर था पानी में, और 5 मिनट बाद देखेंगे निकल के अब इधर आ गया, तो सुबह हो गई, रात हुई कोई नहीं, रात 2 बजे आप घड़ी देखे तो बाहर सूरज निकला होगा, ये कौन कर रहा है? वक्त इलाफ लैली व नहार, इतनी बड़ी तब्दीलियां वो लेके आता है, तो तुम्हारी जिंदगी में तब्दीलियां नहीं ला सकता? दुख सुख बीमारी सेहत किसके हाथ में? और ये रात और दिन का आना जाना ना, ये इस्तियारा भी है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक इशारा भी है कि जिंदगी में भी कभी खुशियों की सुबह हो जाती है, कभी दुखों की रात हो जाती है, कभी हम धन धन धनाते फिरते दौड़ते सेहतमंद हैं, कभी बिस्तर पर डाल दिए जाते हैं, सिर्फ एक बुखार हो जाए हम में से किसी को, अल्लाह रहम करे, सर में दर्द हो जाए, हम बिस्तर पे चिपक के रह जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, सोने जैसी चीज को हमारे आगे रख देना कि कि ये पहन लो या ये खा लो पी लो, नहीं अच्छी लगती कि सर में दर्द है। वक्त इला फिल लैली व नहार, इस रात और दिन को काबू करने वाली वो जात है जिसके आगे तुम्हें झुकने को कहा जा रहा है, जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये कायनात बनाई, उसके हाथ में मैं और आप नहीं कर सकते कुछ भी। हम अपने मकसद तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। आज देखिए कि सुबह हम सब कितने मजबूर थे, वही स्कूल, वही रास्ते, वही गाड़ियाँ, हम भी वही। वो रास्ता जो 5 से 4 मिनट में पूरा हो जाता होगा, शायद 45 मिनट में आप में से भी बहुत सारों का होगा। मैं तो इंजॉय कर रही थी। कैसे आज आपको पता है हमारे साथ कैसी बहन है कि जिसका मुझे यकीन है कि अल्लाह को इस वक्त हम सबसे ज्यादा उन पे प्यार आ रहा है। और मैं हंस रही थी, मैंने कहा ये असल में आज मौसम नहीं खराब हुआ या ये आज रास्ते नहीं बंद हुए, ये अल्लाह हमारी इस बहन को दिखा रहा है कि जिस रास्ते को तुमने चुना है उसने घूमना पड़ता है, उसमें कभी बंदा लॉस्ट होता है, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, तो हिदायत बिल्कुल हमारे पास ही होती है लेकिन हम उसके इधर के लॉस्ट होते हैं। आज भी ऐसे हिदायत एकदम नहीं मिलती, हम उसके बिल्कुल करीब जैसे कहते हैं ना टकरे मार रहे होते हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। और जो ही अल्लाह का हुक्म होता है अल्लाह कहते हैं आ जाओ दरवाजा खोलो, अल्लाह आपको सीने से लगा देता है। तो हिदायत के करीब रखना, उसके अंदर लाना करीब, सब अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं सुपर ताकत हूँ, दुनिया में आप कहते हैं फलां सुपर पावर है, फलां मुल्क सुपर पावर है, किसकी सुपर पावर है? आप तूफान को क्यों नहीं रोकते? हरिकेन हर साल आके आपकी इतनी स्टेट्स को तबाह कर जाता है, आप क्यों नहीं रोक सकते? हम रात के मुकाबले में बहुत सारी रोशनियां तो जला लेते हैं लेकिन हम रात को रोक सकते हैं? दिन आता है हम नहीं सोचना चाहते, हम काले पर्दे डाल लेते हैं लेकिन क्या हम दिन को पकड़ के अंधेरा कर सकते हैं? तो जब एक जात इतनी बड़ी है, उसके हाथ में सब कुछ है, तो बड़े क्यों बनते हो? जो बंदा कहता है मैं बड़ा हूं, मुझे पूजो, मुझे सजदा करो, मेरी बात मानो, मेरा हुक्म मानो, मैं जो कहता करो, उसे को तुमने करके क्या दिखाया? चलो रात को जरा दिन में तो बदल के दिखा दो, दिन को रात में बदल के दिखा दो, कितनी बड़ी कुदरत है। लेकिन हम रोज चुके ये चीजें देखते हैं तो हम इस पर गौर ही नहीं करते। इंसान इतना ना शुक्र है कि जो काम पहली दफा होना कहता है वाह वाह हा हा, फिर दूसरी दफा देख के कहते हैं हो ठीक है, तीसरी जो कहते ये तो होना ही है। देखिए रात और दिन बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे सिंबलाइज लग रहा है कि जैसे जिंदगी में कभी बिल्कुल अंधेरा होता है, कभी रोशनी होती है। बच्चे का दुनिया में आना क्या है? सच बताइए, अगर इंसान ने अपनी आंखों से ना देखा हो ये मंजर, तो कोई मान सकता है कि बच्चा जिस तरीके से पैदा किया जाता है? अगर ये गैब का मामला होता और कहा जाता कि इस तरह बच्चा एक पानी की बूंद से शुरू होता है और फिर उसके बाद माँ के पेट में रहकर बाहर आता है, कोई मानता? अब तो माने वगैरह गुजारा ही नहीं, क्योंकि दिन रात सुबह शाम डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सें, औरतें सब देख रही हैं कि हो रहा है, क्योंकि हो रहा है तो हम सोचते ही नहीं। इतना सा छोटा सा बच्चा आता है हमारी गोद में, हम कहते हैं यही संभालना मुश्किल है, पता तब लगता है जब उसको टांगे लगती हैं। पहले कहते हैं कि माँ का पेट में बस बोझल है बोझल है, जरा बाहर आ जाए तो माँ सुखी है। वो पता चलता है जब बाहर आता है, 40 दिन तक रोता ही रहता है। फिर माँ कहती है पेट में था मैं सो तो जाती थी, अब तो इसको मुसीबत है कि ये सोता ही नहीं है, मैं सोती हूँ तो ये उठ जाता है, ये उठता है तो मैं सोती हूँ, जब खाना खाने बैठो इसको मेरी जरूरत पड़ जाती है ना? फिर एक वो बच्चा मेरी आंखों के सामने बड़ा हो जाता है। मैं कहती हूँ जितना इंसान बच्चे के बड़े होने के ऊपर सोचे ना अल्लाह को, कोई दुनिया का पीर फकीर जिंदा मुर्दा कर सकता है? तो नहीं कर सकता, तो फिर तुम अल्लाह जैसी मोहब्बत किसी से कैसे कर सकते हो? फिर अल्लाह जितनी बात किसी की कैसी मान सकते हो, और अल्लाह जितना डर तुम किसी और का कैसे रख सकते हो? फिर आप देखिए कि अगली चीज हमने आयत में देखी, वल फुल किल्लती तजरी, और वो कश्ती जो के चलती है फिल बहरी, समंदरों में, बीमा यनफाउन्नास, लोगों को नफा देती है। एक और अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखा रहे हैं कुरान में कि देखो इतनी बड़ी बड़ी कश्तियां, बहरी जहाज, वो टाइटैनिक हो, वो उसका आप कोई और नाम रख लें, वो फलां क्रूज हैं, फलां हैं, तुम उसमें जो उछला कूदियां कर लो, गलत काम करो, अच्छे करो, जो भी करो, लेकिन बताओ कि इस कश्ती को कौन पानी में चलाता है? अब देखिए कि पानी की आदत क्या है कि आप एक पतली सी बारीक सी सुई लेंगे ना तो पानी के अंदर रखेंगे ना तो ये डूब जाएगी, लेकिन इतना मनोटनो वजन रखने वाला जहाज क्यों नहीं डूबता? अल्लाह ने हुक्म दे दिया तुमने नहीं डूबना। देखिए ये सब वो चीजें हैं जो इंसानों के बस में नहीं है। पानी पे आप कहते ठीक है जी, वो जहाज चला रहा होता है आदमी और जहाज बड़े महफूज हैं, लेकिन अगर अल्लाह पानी को हुक्म दे दे कि इसको ले लो तो पानी ले लेता है ना? किस तरह से आप देखिए कि अल्लाह की कुदरत है। और जितना बड़ा जहाज हो कहते हैं उतना सिक्योर होता है, उतना ज्यादा महफूज है, क्योंकि अल्लाह ने पानी को कह दिया कि बस तुमने इसको ऊपर ऊपर रखना। बिजली देखिए, बिजली ये स्टील के अंदर से गुजर जाएगी, करंट पड़ेगा, पानी से गुजरेगी, ये प्लास्टिक में से नहीं गुजरती, अल्लाह का हुक्म है ना। तो जब एक बंदा अल्लाह के आगे इतना बेबस है तो फिर क्या वो उसकी बात नहीं मानेगा। फिर इस तरह आप देखिए कि अगली नेमत जिसको हमने देखा था वो क्या था कि वमान जला मिनस समाई मिम्माई, बल्कि ये टाइटैनिक का मैंने लफ्ज बोला तो आपने नाम सुना होगा कि जब ये जहाज बना था आज से 1.5 सदी पहले की बात है, ये तो अब डिस्कवर हुआ है, डूबा तो ये बहुत पहले था। और रैकेट पे कहते हैं वो अल्फाज मौजूद हैं कि उस कंपनी के बनाने वालों ने कहा था कि ये जहाज इतना सिक्योर है कि इसको तो गॉड भी नहीं डुबो सकता, गॉड ने डुबो के दिखा दिया। अभी उस दिन भी कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे कि कैसे जमीन के अंदर जहाज जा रहा था तो अंदर चट्टान थी तो उसको टकराया और वो उलट गया और लोगों ने फिर अपनी जानें बचाई। तो कहाँ जाता है इंसान को उस वक्त बस। तो जब इतनी बड़ी जात है कि जो हमारे सारे काम चलाती है, तो क्या हमें फिर उसके मुकाबले में किसी दूसरे से डरना चाहिए। फिर अगली कुदरत देखी हमने, जो देखी वो कहती वमान जला मिनस समाई मिम्माइन, थोड़ा सा गौर कर लीजिए, पानी, बारिश, ये बारिश कहाँ से होती है। बचपन में हम क्या सोचते थे कि आसमान पे छलनी लगी हुई है वो छोटे छोटे सुराखों वाली, और ऊपर कोई पानी होता है तो उसमें से छन छन के पानी के कतरे गिरते हैं। आज देखे बारिश कहाँ से होती है, कोई साइंस पढ़ा हुआ तो फौरन बता देगा कि वो समंदरों के ऊपर पानी जमा होता है, बहारात ऊपर जाते हैं, फिर वो गाढ़े होते हैं, कंडेंस होते हैं, फिर ठंडे होते हैं, फिर हवाएं उसको लाती। ये करता कौन है, किसने किया, अल्लाह की जात। आप देखिए कि पाकिस्तान में मोटर चला के ना तो टैंकियों में पानी लोग भरते हैं, कितना मुश्किल, बिजली चली गई या पानी नहीं चढ़ रहा, फ्लो नहीं, हर वक्त मसले ही रहते हैं, इल्ला माशाल्लाह। ये इतने मनोटनों वजन को उठा के पानी फिरती है। आज भी अब हमारे रहते तो रास्ते में लॉस्ट ही थे तो मैं ऊपर देख रही थी, जाहिर है कल की जो हवाएं चली हुई हैं तो समंदरों से अभी भी आप देख रहे होंगे आसमान पे यूं गहरे बादल जो है वो आ रहे हैं ना। तो मैं उनको देखते हुए ही सोच रही थी कि हमने यहाँ से थोड़ी सी चीज़ उधर मूव करानी हो कितना किराया लग जाए, कितनी शिपिंग है। ये जितना पानी, बारिशें, हवाएं आसमानों से लेके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं वो उठाना पड़े तो हम कंगाल हो जाए। जिस तरह हमें दुनिया में बिल देने पड़ते हैं, अगर बारिश के पानी का भी बिल देना पड़े तो हम तो सारे कलाश हो जाए। तो ये कुदरत की निशानी है, ये खुद नहीं हो सकता, ये जो लोगों ने बना ली ना एक मिथ के खुद ही हो रहा है, ऑटोमाइजेशन है, किसने की। लोग कहते हैं अल्लाह ने बना दिया अब उसका इख्तियार नहीं है, नहीं, इख्तियार ना हो तो फिर ये इस तरह से इंसान तूफानों का शिकार कैसे हो। फिर आप देखिए कि अगली चीज के फाहिया बिहिल अर्द बादा मौती हा, उससे भी खूबसूरत बात, सादा पानी, वाइट कलर का पानी है ना बारिश का, अल्लाह ताला कहते हैं वो पानी मट्टी में जाता है फीका बेरंग, और उसके अंदर से मीठे अनार रेड कलर के, उसमें से ऑरेंज कलर के, वो ये मुर्दा जमीन में से जो फसलें उगती हैं ये पानी के साथ कैसे रंग बिरंगी उगती हैं। यानी थोड़ा सा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि गौर करो जब ये कायनात में जो तुम खाते पीते हो वो क्या है। और अगर इस सिर्फ इसके ऊपर गौर करते हुए दो चीज़ों पे हम गौर कर लें जो मेरा हाल है अक्सर लोगों के घरों में रोज बनता है, नंबर एक सैलड और दूसरा फ्रूट चाट। कभी फ्रूट चाट काटते वक्त मैंने और आपने सोचा ये स्ट्रॉबेरी को सुर्ख रंग और ऊपर पीले छोटे छोटे जर्रे और वो काली आंखें किसने दी, इतनी डेलिकेट कि जरा छुरी सख्त लगे तो रोने लग जाती है। अंगूर जरा गुस्से से पकड़ेंगे ना तो रोने लग जाता है, पानी उसके आंसू निकल आते हैं। आप देखिए ऑरेंज खोलें, हाँ आप उसको, एक ऑरेंज में तकरीबन 12 फांगे, और हर फांग को खोल के देखें हर एक के अंदर शायद कई 100 कतरे, सिंगल ड्रॉप पैक किया हुआ अल्लाह ने। आपकी पैकिंग कितनी होती है, कहते हैं जी 1 लीटर पैकिंग, हाफ लीटर पैकिंग, सबसे छोटी वो होती है जो जहाज़ों में सर्व करते हैं अमूमन, फ्यू मिलीलीटर, 2-3 घूंट होता है। मैं कहती हूँ पैक क्यों करना था, वो जो काली मिर्चें देते हैं अल्लाह की बना, मैं कहती हूँ इस पे तो खर्चा इतना आ गया, गिन ले आप उसके दाने, इतनी छोटी पैकिंग होती है। अच्छा करते हैं क्योंकि ज़ाया ना हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इस पर यकीनन खर्चा पैकिंग का ज़्यादा आया, अंदर है ही कुछ नहीं, कहा करो ज्यादा डाल दो थोड़ा साथ ले जाओ, लेकिन रिसोर्सेज तो जाया ना हो। तो आप देखिए कि अल्लाह ने सिंगल ड्रॉप को पैक किया हुआ है। आज आप फ्रूट चाट बनाएं और खोलें और उस पर बात करें अल्लाह से कि अल्लाह ये तूने कैसे बनाया, क्या किसान 7 ऑरेंज कलर डालता है, उधर सुर्ख रंग डालता है, सब्ज पत्ते निकल आते हैं कहीं से, आप देखिए कि सुर्ख गाजरें, सफेद मूली, मट्टी के अंदर से मूली निकलती है और बिल्कुल सफेद चमकती हुई। अल्लाह कहते तुम नहीं सोचते कैसे ये कौन कर रहा है, कौन है तुम्हारे ताकत की कोई करने वाला। आप जितनी मर्जी आर्टिफिशियल चीजें बना लें पीछे नेचुरल चीज़ों से ही बनती हैं। अगर ज़मीन जो सब्जियां फल हमें देना छोड़ दे, हमारी सारी फैक्ट्रियां ही बंद हो जाए, हमारा सारा किचन ही सोना हो जाए। फिर आप देखिए अगली चीज़, वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्ली दाबतिन, हर तरह के चलने फिरने वाले उसमें चलाए। किस तरह चलते हैं हम इंसान, कैसे चलते हैं? पाँव पाँव दो कदम है। मुर्गी कैसे चलती है? उसके भी दो पाँव हैं, बत्तख के भी दो हैं। फर्क कैसे है? हम बिल्कुल सीधे हैं, आप देखिए हमारे पाँव नीचे लगे हुए ना, आम जानवरों के पाँव यूं लगे होते हैं जिनके दो होते हैं। चार कैटल, जिसको आप मवेशी कह सकते हैं, गाय भैंस बैल बकरी, अला नाम सूरत नाम पूरी पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। फिर आप देखिए कि रेप्टाइल्स पेट के बल चलते हैं, सांप बिच्छू। सूरत नूर में आती आती है कि अल्लाह ताला कहता है कुछ तो ऐसे हैं जो पेट पे चलते हैं, कुछ दो टांगों पे चलते हैं, कुछ चार पे चलते हैं। और इंसान की ज़िंदगी में देखें ये सारे मरहले आते हैं। सबसे पहले बच्चा पेट पे क्रॉल करता है, फिर वो दो हाथ और दो पाँव दे रख के चल रहा होता है, फिर एकदम सीधा चलता है, फिर भाग ही जाता है। ये कौन करता है? कभी इंसान अल्लाह के बारे में गौर करे, कभी उसकी ज़िंदगी में कोई और गम ना रहे, किसी और से उसको कोई उम्मीद ना रहे, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको इतनी प्यारी ज़ात ने पैदा किया और साथ ही साथ कह दिया वह तशरीफ़ रियाह, हवाओं के चलने में। सोचिए ज़रा, कल की हवाएं याद है रात की? डर लग रहा होगा कुछ लोगों को, जब इतने बड़े बड़े दरख्त गिर गए तो घरों के भी तो छप्पर हिल ही रहे होंगे ना, कोई उन हवाओं को रोक सकता था? कभी खुशगवार हवाएं होती हैं तो मज़ा आता है, आप कहते हैं खिड़की खोल दो हवा अच्छी आ रही है। कभी आप इस खौफ से बंद कर देते हैं कि जी हवाएं बड़ी तेज़ है। बस सहाबिल मुसख़्खरी बैनस्समा, और वो बादल वो क्लाउड जो आसमान और ज़मीन के बीच में तैरते रहते हैं, कैसे ना नीचे ऊपर ना ऊपर कुछ, कैसे बादल है देखिए आप, उनके ऊपर से भी कोई हैंगर्स नहीं है जिनमें लटक रहे हैं और नीचे भी नहीं। अल्लाह ने ऐसी ग्रेविटी रखी हुई है कि उसके साथ एक ख़ास हद पे चीज़ आके रुक जाती है। ऊपर भी फोर्सेस हैं, वो ऊपर खींचती हैं, ज़मीन नीचे से खींचती है, 9.8 के पॉइंट पे ज़मीन हर चीज़ को खींचती है। हमारा जो वज़न होता है वेट, ये ज़मीन की वजह से, और ऊपर आसमान पे कुछ ऐसी ना नज़र आने वाली चीज़ें हैं जो चीज़ों को ऊपर खींचती हैं, और एक जगह बैलेंस होता है जहाँ चीज़ें चलती रहती हैं। ला या तिल्ली कौम या अकिलून, अक़ल वाली कौम को निशानियाँ हैं। इंसान का धोखा क्या है कि इन चीज़ों को देखता है, हर एक देखता है, लेकिन लोग खालिक तक पहुंचने की बजाय मखलूक में उलझ जाते हैं। इंसानों में कोई कुछ करेगा ना, मिसाल है कि अगर आप देखें किसी के घर जाएं और बड़ी खूबसूरत छत बनी हुई है और उस पर लंबे बड़े बड़े शेंगलर्स हैं और बहुत बड़े फानूस लटके हुए हैं, तो फिर लोग क्या पूछते हैं, अच्छा ये कहाँ से बनवाई है, ये किस कंपनी की है, कितनी प्यारी है। खूबसूरत चीज़ों में खो जाते हैं ना, मादा चीज़ों में। तो आप देखिए कि आसमान पे जो सितारे हैं अल्लाह ने बनाए ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन सब पे जब गौर व फिक्र करोगे ना तो तुम्हें सबसे पहला उस्ताद कायनात है। यहाँ से क्या पता चलता है कि जो गौर व फिक्र करता है ना, उसको कोई उस्ताद ना भी मिले तो उसको कायनात से पता चल रहा है कि कोई है जो बना रहा है। यही मुशाहिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था सूरत अलअनाम में आयत 74 और उसके अगला रुकू, कि किस तरह उन्होंने सूरज चांद सितारों को देखकर अल्लाह को पहचाना। अब होना क्या चाहिए था कि सारी मोहब्बत फिर अल्लाह से हो, लेकिन लोगों का हाल क्या है, वमिन अन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाही अंदादन, कुछ लोग इतने ना समझें कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों से वो मोहब्बत करने लगते हैं, का हुब्बिल्लाह, जैसे कि मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। दूसरों के गुनगाएंगे, छोटी सी कोई काम करे, कोई थोड़ा सा पानी का ग्लास दे देना, 10 दफ़ा उसको थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू। कोई आपको जाते जाते टिश्यू पेपर पकड़ देना आपका ज़मीन से, तो आप कहते हैं थैंक यू। तो जो अल्लाह दिन रात इतना कुछ देता है उसकी कितनी बात मानते हैं, यही जिक्र अगले सबक में आने वाला है। इसलिए क्या पता चला कि अल्लाह वाली मोहब्बत किसी से नहीं की जा सकती। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, ये आपकी दिल की कहानी होनी चाहिए कि ईमान वाले सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। इसको भी समझ लें, अल्लाह ताला हमें ये नहीं कहता कि किसी और से मोहब्बत ना करो, शोहर से मोहब्बत ना करो, बच्चों से नहीं करो, माँ बाप से नहीं करो। अल्लाह चाहते हैं हम सबसे मोहब्बत करें, उसी ने डाली है, लेकिन क्या नहीं चाहते कि सबसे शदीद मोहब्बत किसी और से हो। इसका पता कैसे चलता है? बात तो हम इस पे कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आपको एक छोटा सा क्राइटेरियन दे देती हूँ कि जैसे मुझे कैसे पता चले कि मुझे अल्लाह से ज़्यादा प्यार है या अपने शौहर से। मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत शौहर की होती है। अनमेरिड है तो माँ बाप की साथ लगा ले, बच्चों की लगा ले, कैसे पता चले कि मुझे दूसरों से ज़्यादा प्यार है या अल्लाह से? तो इसका सिंपल सा एक टेस्ट है, जैसे शुगर टेस्ट करते हैं ना, ब्लड टेस्ट करते हैं तो फौरन पता चलता है। इसका सिंपल सा टेस्ट है, एक तरफ अल्लाह का हुक्म है कि ये करो और शौहर कहते हैं कि ये ना करो, किसकी माननी है? अल्लाह की माननी है। अगर शौहर की मान ली, अल्लाह को नाराज़ किया, तो हमने क्या किया? शौहर की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ गई। बात समझ रहे? जिसकी बात मान के दूसरे को नाराज़ कर देते हैं उसकी मोहब्बत बढ़ जाती है। दुनिया में हम कई मिसालें इसकी लेते हैं। आप देखिए कि बच्चे अपने माँ बाप के आगे बोलते हैं, क्या कहते हैं? हमें अपने दोस्तों के पास जाना है। अब जवान बच्ची है, वो कहती है मुझे रात को जाना है दोस्तों को मिलने। माँ कहती है ना जाओ, वो कहती नहीं मैंने जाना है। अब अगर वो सरकश है, बागी है, तो चली जाती है, तो उसने किस बात का सबूत दिया कि उसको अपनी दोस्तों से अपने माँ बाप की नस्बत ज़्यादा प्यार है? बस इसी को बड़ा कर लें। तो जब हम अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करते हैं, तो ये शिर्क फिल मोहब्बा है, मोहब्बत का शिर्क है। टू मेकिंग पार्टनर्स इन दी लव ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग जो हैं कल क़यामत के दिन बड़े दुखी होंगे। कैसे होंगे? उनका हाल क्या होगा? कि जिन लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने अल्लाह ताला को नाराज़ किया था, उनका क़यामत के दिन हाल क्या होने वाला है? कि सबके बीच में आकर ये लोग इनकार कर देंगे कि कभी इन्होंने हमारी बात भी मानी थी। कैसे मानी थी? इस तबर्रज़ीन तुबी व तबाउ। ये पूरी बात समझ आ गई थी? कैसे वो लोग क़यामत के दिन हमसे बेजार होंगे जिनको हमने खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ किया था। देखिए, ज़िंदगी में ऐसे मामले आ जाते हैं। एक क्या होता है कि ना शौहर को अल्लाह से प्यार है ज़्यादा, ना बीवी को। बात चलती जाती है, कोई बात नहीं, कभी उसने अल्लाह को नाराज़ कर दिया उसके लिए, कभी शौहर ने। सबसे ज़्यादा मसला कब आता है? जब दिल में ईमान आता है, इस्लाम आता है। एक अच्छा काम करता है तो दूसरा ख़राब करता है, फिर मसला है। उस वक्त अगर बंदा अल्लाह ताला को राज़ी कर ले और दूसरों की नाराज़गी की परवाह ना करे, बल्कि अल्लाह से ही दुआ करे कि तू इनके दिलों में मेरे लिए नरमी डाल दे, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देता है। आपको पता है कि जब ये आयात नाजिल हो रही थी नबी सल्लम पे, तो माहौल क्या था? हर घर में किसी को अल्लाह इस्लाम दे रहा था। मक्का में तो हालात क्या थे कि बच्चे पहले मुसलमान हो रहे थे, माँ बाप बाद में होते हैं। जद्दी पुश्ती उनके माँ बाप, तो अगली आयतों में जिक्र आने वाला है। तो होता क्या था कि ऐसे माँ बाप जो थे, जो भी दीन पे नहीं थे, जब उनके बच्चे दीन पे आते तो माँ बाप उनको धमकियाँ देते। जैसे मुसअब बिन उमैर, बड़े अमीर शख्स थे, शहजादे कह ले, खूब खाते पीते उठते थे, माँ भी बड़ी अमीर थी। जब इनको अल्लाह के नबी सल्लम से मुलाकात का मौका मिला, उनकी ज़ुबान से इस्लाम सीखा, दिल मान गया। जब दिल को जो पता चल गया है कि मेरा मालिक ये है, सच ये है, और मैंने खुद मरना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, तो मैं किसी की बात से क्यों डरूंगी? ये मुसलमान हो गए। मुसलमान हुए, जब माँ को खबर मिली इनके मुसलमान होने की, माँ ने इनसे बाइकआउट कर दिया। कहने लगी कि मैं तुमसे कलाम ही नहीं करूंगी, मैं तो तुमसे से बात नहीं करूंगी। धमकियां दी, घर से निकाल दिया। हज़रत इब्राहिम को पढ़ लीजिए, उनके बाप आज़र ने उनको धमकियां दी कि मैं तुझे रजम कर दूंगा। ये जो आग जलाई गई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, उसमें बाप भी ईंधन डालता था। तो ये तो होगा, ये तो होता है। अबू हुरैरा जब मुसलमान हुए तो उनकी माँ इतनी नाराज़ हुई, कहने लगी तुमसे कलाम ही नहीं करूँगी। एक सहाबी मुसलमान हुए, माँ ने कहा मैं तो धूप में बैठ जाऊँगी, तुम्हारे सिरे चढ़ के मरूंगी। किसी ने कहा मैं कंघी नहीं करूँगी, किसी ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी। और इसके अलावा जो चोटें पड़ी और जो बिलाल को पत्थरों पे लिटाया गया, वो सारा क्या था? आप सब तो सुनते ही रहते हैं ये कहानियाँ। जलती रेत पे हजरत बिलाल को पत्थरों पे लिटा देते थे, ऊपर भारी पत्थर डाल देते थे, कहते थे कहो कि अल्लाह एक नहीं और भी है साथ, तो कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतनी मार पड़ती थी, उमैया उनको इतना मारता था कि खुद थक जाता था। कहता था कि तुम इतनी मार खाते हो, तुम्हें कुछ नहीं दर्द होती? कहते थे मुझे पता है मैं किसके रास्ते में मार खा रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दिन इनकी माँ के पास चला गया उमैया, कहने लगा अपने बेटे को समझाओ, इतनी मेरे से मार खाता है। तो माँ ने आके बेटे को कह दिया। माँ भी मुसलमान हो चुकी थी लेकिन छुपाया हुआ था हालात के मुताबिक कि फितना ना हो। तो माँ ने भी कहा, बेटा जब अल्लाह को पता है तेरे दिल में कि तू मेरे पे ईमान लाता है, तुझे मेरे से प्यार है, मेरी बात मानता है, तो फिर तू क्यों मार खाता है, कह दे जो ये कहता है जुबान से। तो हजरत बिलाल हंसने लगे, कहने लगे, आज मुझे पता चला कि उमैया हार गया और मैं जीत गया हूँ। कहा, वो कैसे? कहने लगे कि अगर ये मुझसे हारा ना होता ना, तो आज मेरी ही माँ को सिफारशी बना के मेरे सामने ना भेजता। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना कोई छोटी बात है? जब किसी से मोहब्बत होती है, आप देखिए लड़कियों को दुनिया में किसी से मोहब्बत हो जाती है, लड़की को लड़के से, ऐसे ही रात जाता लड़का चाहे उसको नाक भी ना साफ करना आता हो गई है जी, साथ पढ़ते थे, हो गई है मोहब्बत, यही बहुत बड़ा उजर है कि जी साथ पढ़ते। अब क्या होता है, वो माँ बाप के आगे बोलती है, होश ही नहीं रहती कि ये कौन है जिससे शादी की मैं बात कर रही हूँ। बाज़ दफ़ा मुसलमान भी नहीं होते लड़के, लड़कियाँ उनकी मोहब्बत में चूर होती है ना, तो ये एक लड़की लड़के की मोहब्बत में चूर है, तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी बताइए फिर उसका क्या हाल होगा। तो हमेशा अपनी जगह अल्लाह के ऊपर रखें, यही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन जिन की भी बातें आपने मानी अल्लाह को नाराज करके, तो इस तबर्रज़ीन तुबी मिनल्लज़ीन तबो, क़यामत के दिन वो लोग जिनकी बात मान के अल्लाह को नाराज कर दिया था वो सब बेजार हो जाएंगे आपसे। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आखिरी पारे तक जिंदगी रही तो आप सूरत अब्बस में पढ़ेंगे कि यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबी, एक एक रिश्ते का नाम लेके अल्लाह ने बता दिया क्यामत के दिन आदमी अपने बाप से, भाई से, बेटे से, बीवी से सबसे भाग रहा होगा कि तुम मेरी जान छोड़ो। क्यों? कि लिकुल इमरिन मिन्हुम यौमइज़िन शानुन युग्नी, उसे हर बंदे का हाल ऐसा होगा कि उसको दूसरों से बेजार कर देगा। मुझे तो अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि मैंने आग से बचना है, मैं जन्नत में जाऊंगी नहीं तो मैं किसी की कैसे मदद करूंगी। इसीलिए अल्लाह ताला आप देख रहे कहते हैं कि वतकत्तत बिहिमुल असबाब, इसमें वो सब बुजुर्ग भी आते हैं जो शिर्क की हद तक लोगों को ये तसलियां दिला देते हैं कि देखो हम तुम्हारी क़यामत के दिन मदद करेंगे, तुम हमारे नाम पे नजरें दो, न्याजें दो, हमारी कब्रों पे आके दिए जलाओ, तुम आके हमारे काम करो करो, हम तुम्हारी मानेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कोई उस दिन किसी के काम नहीं आएगा। आ सकता है? जो खुद बीमार है वो किसी दूसरे बीमार की मदद कर सकता है? इसीलिए फिर इस आयत में कहा कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम, अल्लाह उनके वो सारे अमल जो थे वो हसरतें बनाकर दिखाएगा। हसरत क्या होती है? लफ्ज़ हसरत सुन के दिल उदास हो जाता है। अरबी जुबान में कहते हैं किसी चीज़ को नंगा करना और उस पर से पर्दा उठाना। जो चीज़ हाथ से निकल जाए इस पर शर्मिंदा होना, इसको हसरत कहते हैं। और ऐसा कब होता है? जब बंदे को गम होता है। तो गोया के हसरत क्या है? गम है। अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत के दिन वो हसरतें बनेंगे उनके अमल जो इनके पीछे फिरते थे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार, और वो आग से निकलने वाले नहीं हैं। यहाँ तक देखिए कि हमने सबक किया था जिसमें से अभी तक जो बात समझ आई कि उम्मते मुस्लिमा उम्मते वसत कब बनेगी? जब तौहीद आएगी। पहला तकाजा एक मुसलमान से क्या है? लोग कहते हैं इस्लाम क्या है? कुछ भी नहीं है, बस एक चीज़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, उसके सिवा और कोई नहीं, और मोहम्मद उसके रसूल है। पूरी शरीयत इसमें आ जाती है। जब अल्लाह को मान लिया ना तो उसकी बात भी माननी है, और उसने कितनी छोटी बातें कही हैं। इतनी आसानी वाला दीन तो शायद कोई दुनिया में होगा नहीं। ये आज के सबक में आगे हम चलते हैं।